अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस उपनिषद के षष्ठ प्रकरण का विचार प्रारंभ हुआ है। आचार्य पिपलाद जी से छह ऋषियों में से सुकेशा नाम के जो ऋषि हैं, षोडश कल पुरुष विषय प्रश्न करते हैं, अर्थात उनके मन में षोडश कल पुरुष को जानने की इच्छा है, उनका जिज्ञासा है षोडश कल पुरुष। तो अपने जिज्ञासित अर्थ को जानने की इच्छा उन्हें क्यों हुई, इसकी पृष्ठभूमि उन्होंने बताई। उनके आश्रम में सुकेशा नाम के ऋषि के आश्रम में जब वे रहते थे, अपने गुरुकुल में रह करके वेदाध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को वेद का अध्ययन कराते थे। उस समय कौशल देश का राजपुत्र आकर के उनसे षोडशकल पुरुष विषयक प्रश्न किया, लेकिन षोडशकल पुरुष का बोध उस समय नहीं था सुकेशा ऋषि को, इसलिए सुकेशा ऋषि के मन में कौशल देश के राजपुत्र के द्वारा पूछने के बाद उनको तो बता दिया जैसा था, षोडशकल पुरुष विषयक अज्ञान उनको, इसलिए राजपुत्र वापस गया। लेकिन इनके मन में राजपुत्र के द्वारा पृष्ट षोडशकल पुरुष को जानने की इच्छा प्रकट हुई। षोडशकल पुरुष विषयक अज्ञान उनके हृदय में कांटे की तरह चुभने लगा और वही अज्ञान निवर्तक षोडशकल पुरुष विषयक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उनके हृदय में तब से हुई और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आचार्य पिपलाद जी के पास अपने और पांच मित्र ऋषियों के साथ वे आए हुए हैं। पांच ऋषियों ने भी क्रमतः एक एक प्रश्न किया, उनका उत्तर आचार्य पिपलाद जी दे चुके हैं। षष्ठ ऋषि जो ये सुकेशा हैं, इन्होंने वही प्रश्न आचार्य पिपलाद जी से किया जो हिरण्यनाभ नामक राजपुत्र ने इनसे किया था बहुत पहले। वो प्रश्न ये है कि तन्त्वा पृच्छामि क्वासो पुरुष इति, कि हे भगवन, ऐसा आचार्य पिपलाद जी को संबोधित करके सुकेशा कहते हैं कि तम त्वा पृच्छामि, तम यानी हिरण्यनाभ के द्वारा मुझे पूछा गया षोडशकल पुरुष को मैं आपसे पूछता हूं कि क्वासो पुरुष, वह असो पुरुष यानी वो षोडशकल पुरुष क्व यानी कहां है, जिसे मैं देखूं वहां जाकर के जानूं उसके विषय में। तो इस प्रकार का हिरण्यनाभ का मूल प्रश्न वही सुकेशा ने आचार्य पिपलाद जी से पूछा है। आचार्य पिपलाद जी षोडशकल पुरुष कहां है, ये जो सुकेशा का प्रश्न है इसका उत्तर देना द्वितीय कंडिका से प्रारंभ करते हैं। तो द्वितीय कंडिका को देखिए, तस्मै सहो वाच इहे वान्तः पुरुषे सौम्यस पुरुषो यस्मिन् नेताः षोडशकलाः प्रभवन्तीति। तो ये कहा तस्मै, यानी प्रश्नकर्ता सुकेशा ऋषि को, तस्मै शब्द का अर्थ निकलेगा। तस्मै ये तत्शब्द रूप सर्वनाम का चतुर्थी का एक वचन है। तो ये कहा जा रहा है सुकेशा ऋषि को, स शब्द बताता है आचार्य पिपलाद जी को। तो आचार्य पिपलाद जी ने सुकेशा ऋषि को कहा, यानी उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, क्या कहा कि हे सौम्य, ये संबोधन है सुकेशा को, हे सौम्य ऐसा संबोधित करके कह रहे हैं। सौम्य शब्द का अर्थ होता है प्रियदर्शन, प्रियदर्शन का अर्थ होता है जिसका दर्शन प्रिय है, सुख पहुंचाता है, आह्लाद पहुंचाता है। ऐसे सोम शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा, और चंद्रमा को देखने से आह्लाद होता है। तो चंद्रमा के दर्शन के तरह दर्शन जिसका है उसे कहा जाता है सौम्य। सोम कहते हैं चंद्रमा को, और सौम्य कहा जाता है चंद्रमा के दर्शन के तरह दर्शन जिस व्यक्ति का होगा वह सौम्य है। तो चंद्रमा का दर्शन दृष्टा को आह्लाद पहुंचाता है, सुख पहुंचाता है। ऐसे जिसका दर्शन करने से दृष्टा को आह्लाद पहुंचे, आनंद अनुभूति हो, उसे कहा जाता है सौम्य। आचार्य पिपलाद जी ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी यद्यपि अपने आप में संतुष्ट होता है, उसे बाह्य किसी पदार्थ विशेष से संतोष नहीं होता, सुख नहीं होता। स्वतंत्र सुख है आत्मसुख, स्वरूभूत सुख, उसकी अनुभूति निरंतर ब्रह्मज्ञानी करते रहते हैं। लेकिन ऐसे ब्रह्मज्ञानी आचार्य पिपलाद जी हे सौम्य ऐसा संबोधन सुकेशा को कर रहे हैं, का मतलब आचार्य पिपलाद जी जैसे ब्रह्मज्ञानी को भी सुकेशा के दर्शन से आह्लाद हो रहा है, देखने से आह्लाद हो रहा है, आनंद हो रहा है। ब्रह्मज्ञानी को किसी के देखने से आह्लाद हो जाए, सुख हो जाए, कहां पर किनको, ओ हिरण्यनाभ को, हिरण्यनाभ ने आचार्य सुकेशा से पूछा, क्या आप जानते हो षोडशकल पुरुष को? ओ त्वम शब्द का अर्थ तू किया है, वो अनुवादक ने ऐसा किया, लेकिन तुम शब्द का अर्थ आप भी होता है, तुम होता है ऐसे, लेकिन आप इस अर्थ में है। तो क्या आप जानते हो षोडशकल पुरुष को? ऐसा तो सुकेशा को देखने से आचार्य पिपलाद जी जैसे ब्रह्मज्ञानी को भी, अपने आप में संतुष्ट रहने वाले को भी आनंद हो जाए, तभी तो हे सौम्य ऐसा संबोधन करेंगे। तो आत्मज्ञ को किसको देखने से आनंद होता है, तो आत्मज्ञ को संसार की सुंदर से सुंदर वस्तुएं तो संसार उनकी दृष्टि में बाधित होने से, कल्पित होने से, मिथ्या होने से, रबड़ से बने हुए खिलौने जैसा है, इसलिए वो उसे सुख नहीं देगा। हिरण्यनाभ के शरीर आदि को देख करके वे प्रसन्न हुए ऐसा नहीं है, वो अल्लादित उनको कर रहा ऐसा नहीं। ब्रह्मज्ञानी को भी आह्लाद तब होता है जब वे जिसकी निरंतर अनुभूति करते हैं और उसकी चर्चा करने में कोई न कोई निमित्त बन जाए, तो उनका आनंद उबल जाता है। जैसे दूध उबलता है तो जिस बर्तन से उबल रहा है उससे ऊपर आ जाता है, उबाले लेना शुरू कर देता है। ऐसे आनंद सागर में जो डूबे हुए हैं तो मुख से शब्दों के माध्यम से उनका वो आत्मानंद और प्रफुल्लित होता है, प्रकट होता है। तो हिरण्यनाभ का जो प्रश्न है षोडशकल्प विषयक, वह परमात्मा की जिसकी निरंतर मैं के रूप में अनुभूति आचार्य पिपलाद जी कर रहे हैं उसकी चर्चा करने में निमित्त बन रहा है, इसलिए वे हिरण सुकेशा को हे सौम्य ये संबोधन कर रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म चर्चा में प्रवृत्त करने में जो निमित्त बनता है वह निमित्त अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, तो उनका प्रश्न ब्रह्मचर्चा का निमित्त बना, इसलिए ये कहते हैं कि हे सौम्य सुकेशा को। सुकेशा जी ने पूछा है कि वह षोडशकल्प पुरुष कहां है, तो षोडशकल्प पुरुष को बता रहे हैं कि इहैव अंतःशरीरे स पुरुषो, वह पुरुष कहीं सातवें आसमान में बैठा हुआ हो ऐसा नहीं है। परमात्मा वेद बताते हैं कि इसी शरीर में हृदय में विद्यमान है, तो इह शरीरे, इसमें इह शब्द का अर्थ है अस्मिन, जो हमें उपलब्ध है शरीर, इसी शरीर के अंदर अंत यानी अंदर शरीर के अंदर कहां पर, तो हृदय में प्रतिष्ठित हैं परमात्मा सबके आत्मा के रूप में। इसलिए भगवान कृष्ण ही कहते हैं ना कि अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता सयस्थित, सभी प्राणी आशय शब्द का अर्थ होता है हृदय, तो प्राणी मात्र के आशय यानी हृदय में स्थित जो आत्मा है वो मैं हूं। और सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्वं तिष्ठति, ऐसे कई बार गीता में भगवान ने अपना स्थान प्रत्येक प्राणी का हृदय बताया है ना, तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान है, इसलिए कहते हैं कि इहैव शरीरे यानी इसी शरीर में अंतः यानी हृदय देशे स पुरुष, यानी हिरण्यनाभ ने जिस पुरुष विषय तुम्हें प्रश्न किया और तुमने मुझे जिस षोडशकल्प पुरुष विषय प्रश्न किया वह पुरुष, स शब्द से स पुरुष शब्द से लीजिए, वह इसी शरीर के अंदर हृदय देश में विद्यमान है। पुरुष का विशेषण है स शब्द से बताया गया षोड़श कल, और पुरुष शब्द का अर्थ है पूर्ण तत्व, पूर्णत्वात् पुरुष, ऐसी पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं। तो जो पूर्ण है उसे कहा जाता है पुरुष, और पूर्ण का अर्थ होता है जिसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेदत्रय नहीं है, जो देश काल वस्तु से परिचिन्न नहीं है, उसे कहा जाता है पूर्ण। तो ये जो पूर्ण पुरुष है उसका विशेषण षोड़श कल दिया जा रहा है, और कला शब्द का अर्थ है अवयव, और षोड़श का अर्थ है सोलह, तो षोड़श कल शब्द का अर्थ निकलता है सोलह अवयव वाला, और जो सावयव होगा सोलह अवयव वाला होगा तो सावयव हो जाएगा, और सावयव जो होता है वह स्वगत भेद से युक्त होता है, उसे पूर्ण नहीं कहा जाता। उसमें सावयव पदार्थ में स्वगत भेद रहता है, सजातीय भेद भी रहता है, विजातीय भेद भी रहता है, तो फिर वो पूर्ण कैसे होगा, पुरुष कैसे होगा। इसलिए ये सोलह कलाएं वस्तुतः उसकी स्वभावभूता नहीं है, सावयव नहीं है वो, श्रुति उसे निरवयव बताती है, निष्कल कहती है, निष्क्रियम निष्कलम शांतम कहती है। तो वेद इसी पुरुष को यानी आत्मा को निष्कल भी बता रहा है, और यहां पर षोड़श कल ये विशेषण देकर के षोड़श कला से युक्त भी बताया जा रहा है। तो निरवयव बताने वाले वेद वाक्य के साथ सोलह अवयव वाला आत्मा को बताने वाला जो वेद वाक्य है उसका विरोध होगा ना, आपस में श्रुति वाक्यों का विरोध होना उचित नहीं है। इसलिए ये षोड़श कल इस विशेषण के द्वारा जो सोलह अवयव वाला कहा गया है वो सोलह अवयव उसके सोलह कलाएं वास्तविक नहीं है, उसकी उपाधि है, और वो इन उपाधियों से युक्त जब होता है तो षोड़श कल कहलाता है, और उपाधि ये सोलह कलाएं जब तक उसके साथ रहेगी तब तक स्वतः जो निष्कल है निरवयव है वो सावयव सा प्रतीत होता है। जैसे आत्मा मनुष्य नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर में जब तक रहेगा तब तक मनुष्य के रूप में प्रतीत होता है, देवता शरीर में जब तक रहेगा तब तक इंद्रादि देवता के रूप में प्रतीत होता है, वो मनुष्य शरीर आदि रूप उपाधि से संबंध जब तक उसका प्रतीत होता है तब तक उस उपाधि जैसा प्रतीत होता है वैसा होता नहीं है। ऐसे ही यहां पर जो सोलह कलाएं बताई जा रही हैं प्राणादि चौथे मंत्र में आएगी, वे सोलह कलाएं आत्मा की स्वरूप भूता नहीं है अपितु कल्पित है अध्यारोपित है। इसलिए औपाधिक कहो या कल्पित कहो आरोपित कहो सकलत्व है उसमें, षोड़श कलत्व है। हाँ, और निष्कलत्व है पारमार्थिक, तो परमार्थतः वह पूर्ण ही है, भले ही षोड़श कलाएं उसकी बताई जा रही है लेकिन वह कल्पित है। इसे बताने के लिए वर्णन करना है निष्कल पुरुष का, उसी को बताने के लिए पहले उसमें कलाओं का अध्यारोप किया जा रहा है। और एक न्याय है अध्यारूप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, इसका अर्थ होता है कि अध्यारूप और अपवाद प्रक्रिया से जो निष्प्रपंच है यानी निर्विशेष है, शब्द अगम्य है, उसे बताया जाता है, उसका निरूपण किया जाता है। तो बताना तो है पूर्ण वस्तु को जिसमें स्वगत भेद भी नहीं है, और स्वगत भेद का अभाव दिखाने के लिए जरूरी है निरवय दिखाना, निरवयों में ही स्वगत भेद नहीं होता है। स्वगत का अर्थ होता है स्वयं में रहने वाला, जो भेद है जैसे शरीर सावयव होने से शरीर का अवयव विशेष जो हाथ है वह पांव नहीं है, पांव कान नहीं है, कान नाक नहीं है, ये सब अलग अलग अवयव हैं। तो एक अवयवी के अलग अलग अवयवों का जो परस्पर भेद है वो है स्वगत भेद, और उस स्वगत भेद से भी रहित है पुरुष आत्मा, और उसे दिखाना है उसका ज्ञान जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति का साधन है, मोक्ष का साधन है। इसके लिए षोडशकल इस विशेषण के द्वारा अध्यारोप प्रक्रिया से निष्प्रपंच पुरुष को दिखाने के लिए ये विशेषण दिया। और ये वाक्य जो आ रहा है दूसरा, यस्मिन नेता षोडश कला प्रभवन्ति इति, इससे बताया जा रहा है कि ये जो येता षोडश कला शब्द से कही जाने वाली प्राणादि सोलह कलाएं हैं, अवयव हैं, वे इसी पुरुष से उत्पन्न होती हैं। प्रभवन्ति का अर्थ है उत्पद्यन्ते, और यस्मिन का अर्थ है इसी पूर्ण पुरुष से निष्पन्न होती है, अर्थात पुरुष शब्दित परमात्मा इन कलाओं का कारण है। जो सुकेशा का जिज्ञास्य है वह कलाओं का विवर्त उपादान कारण है, अधिष्ठान है, इसे बताया जा रहा है। जैसे ब्रह्मानंद वहां तैतृय उपनिषद में भृगुवल्ली में आचार्य वरुण जी अपने पुत्र भी और शिष्य भी भृगु को उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए, वो ब्रह्म जिज्ञासु है ना, और बताते हैं ब्रह्म जिज्ञासु बन करके अपने पिता के पास ही भृगु गए हैं, ब्रह्मज्ञानी ऋषि के पुत्र हैं, और इनको अब ब्रह्म जिज्ञासा हुई है भृगु को, तो विधिवत वरुण के पास जाकर के कहते हैं कि अधि भगवो ब्रह्म, हे भगवान आप मुझे ब्रह्म ज्ञान कराइए, ब्रह्म का उपदेश करिए। तो भृगु के जिज्ञास्य ब्रह्म का उपदेश करते हुए वरुण ने कहा कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। तुम्हारा जिज्ञास्य ब्रह्म कौन है उसका मैं लक्षण बताता हूं कि जिससे ये सारा संसार उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित है, जिसमें लीन होता है, वह ब्रह्म है। तुम्हारा जिज्ञास अविचार करके निर्धारण करो कि कार्य मात्र का जन्म, कार्य मात्र की स्थिति और विलय किस में होता है, वो ब्रह्म है। इसे तुम तप से यानी विचार से जानो, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। और उन्होंने विचार करके निर्धारण किया, अंतिम निर्धारण उनका आनंदाधेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। ऐसा आता है कि आनंद, ये जगत दुख से उत्पन्न नहीं हुआ, जगत का कारण आनंद है, आनंद से इसका प्राकट्य हुआ, वो आनंद है ब्रह्म, और आनंद से ही स्थित है। यदि आनंद बिल्कुल ही न मिले तो जगत समाप्त, तो दुख ही दुख रहे, तो आनंद में जगत की स्थिति है, आनंद से वो निष्पन्न हुआ है, और जब विलीन होता है तो आनंद में ही विलीन होगा, इसलिए आनंद ही ब्रह्म है। ब्रह्म का क्या स्वरूप है? आनंद। और वो आनंद स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म जगत का कारण है, का मतलब विवर्त उपादान कारण है, विवर्त उपादान कारण है, अधिष्ठान है। उस आनंद स्वरूप ब्रह्म में जगत कल्पित है, और आनंद स्वरूप ब्रह्म ही जब जगत अंतपाती कार्यक्रम संघात रूप उपाधि वाला बन जाता है, तो भोक्ता बन जाता है, जीव बन जाता है, और यह जीव जब उस जगत के अधिष्ठानभूत आनंद को मैं के रूप में अनुभव करता है आनंद का, तो मुक्त हो जाता है। तो जगत के अंदर की ही ये 16 कलाएं हैं, जो 16 कलाएं बताई जा रही यहां पर, और पुरुष शब्द से उस आनंद को बताया जा रहा है भृगुवल्ली में, जिस आनंद स्वरूप ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत का लय बताया गया है, वही आनंद स्वरूप ब्रह्म यहां पुरुष शब्द का अर्थ है। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है, वो ब्रह्म मुक्ति का साधन भूत ज्ञान जिस ब्रह्म का है, वो ब्रह्म अलग अलग नहीं है। चाहे उसे सत शब्द से कहा जाए, सदैव सोमें इदम अग्रासित एकमेव द्वितीयम में, वहां छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में, या तैतृय उपनिषद में आनंद रूप से कहा जाए, या वो आपके प्रजापति विद्या में प्रजापति ने इंद्र को जो ब्रह्म विद्या दी, वहां चेतन रूप से उसे कहा गया है, वो है। चाहे सदरूप से कहो, या चिद्रूप से कहो, या आनंद रूप से कहो, एक परमात्मा ही, ब्रह्म ही, और उसी का ज्ञान मय के रूप में जब होता है, तो जीवन मुक्ति तथा अदृष्ट फल विधेय मुक्ति होती है। शब्द बदल जाते हैं, अलग अलग अधिकारी के लिए अलग अलग संस्कारों से संस्कारित बुद्धि होने से किसी को किसी शब्द से वो ब्रह्म लक्षित होता है, किसी को किसी शब्द से लक्षित होता है। बोलिए, परिणामी उपादान कारण त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम, और रजोगुण का परिणाम है दुख। तो उसका परिणामी उपादान कारण में ही जिसकी बुद्धि अटकी रहती है, परिणामी उपादान कारण तथा उसका परिणाम, परिणाम परिणामी भाव ही जो स्वीकार करते हैं, उनको जगत का स्वरूप भी सुख दुख मोहात्मक प्रतीत होता है और इसलिए उसका कारण भी सुख दुख मोहात्मक प्रतीत होता है। हाँ, और जो इस परिणामी उपादान कारण से भी ऊपर श्रुति जहां ले जाना चाहती है जिज्ञासु की बुद्धि को, वहां पर श्रुति को माध्यम बना करके अपने बुद्धि को पहुंचाता है, श्रुति से उपलक्षित करता है, तो वो आनंद स्वरूप ब्रह्म ही है, तो उसे तो आनंद ही आनंद दिखेगा सर्वत्र, आनंद स्वरूप ब्रह्म की ही वह अनुभूति करेगा। उसके लिए जरूरी होता है ये जो परिणामी उपादान कारण त्रिगुणात्मिका अविद्या और उसका परिणाम जगत, ये है अध्यस्त, और इस अध्यस्त से अपनी बुद्धि को विवेक से निकाल करके अधिष्ठान में स्थित करना, हाँ, उसे लक्षित कराना पड़ता है, तब जाकर के आनंद स्वरूप ही सर्वत्र प्रतीत होगा, सर्वम खलविदम ब्रह्म प्रतीत होगा, वासुदेव सर्वमिति प्रतीत होगा। तो ये दिखाने के लिए ये 16 कलाएं रस्सी में कल्पित सर्प के तरह पुरुष शब्दित परमात्मा में कल्पित हैं, अध्यारोपित हैं, ये दिखाने के लिए ये वाक्य हैं, यस्मिन् नेताः षोडश कलाः प्रभवन्ति इति। तो जिसमें, और ये प्रभवन्ति उपलक्षण है स्थिति और लय का मतलब है कि जिस परमात्मा से इन 16 कलाओं की उत्पत्ति होती है, 16 कलाएं जिस परमात्मा से स्थित हैं, सत्ता पा रही हैं, और जिस परमात्मा में 16 कलाओं का विलय होता है, यस्मिन शब्द से जिसको लिया जा रहा है उसे स जिज्ञास्य त्वया तव जिज्ञास्य पुरुष ऐसे लगाना, वो तुम्हारा जिज्ञास्य पुरुष है, जिसकी जिज्ञासा तुमने की, जिसे जानने की इच्छा मेरे सामने प्रकट की, वह षोडशकल पुरुष कौन है कि कलाएं, उपाधिभूत कलाएं जिससे उत्पन्न होती, यानी जिसका विवर्त रूप कार्य है। कार्य दो प्रकार का होता है, एक परिणामात्मक और एक विवर्त। परिणामात्मक कार्य कहा जाता है उसे जो कारण के समान सत्ता वाला होता है, कारण की सत्ता और कार्य की सत्ता एक जैसी हो तो परिणाम परिणामी कहलाता है। तो अविद्या और ये 16 कलाएं, ये दोनों भी व्यावहारिक सत्ता वाले हैं। तो अविद्या का और उसके कार्य 16 कलाओं का सत्व व्यावहारिक है, अस्तित्व व्यावहारिक है, समान सत्ता है, इसलिए इनमें तो परिणाम परिणामी भाव होगा, जगत अविद्या का परिणाम माना जाएगा, रस्सी के अज्ञान का परिणाम है सर्प और रस्सी का विवर्त है, रस्सी का विवर्त है। ऐसे ब्रह्म का अज्ञान रूप जो अविद्या, उसका परिणाम है ये 16 कला है, और ब्रह्म का विवर्त है, रस्सी का विवर्त जैसे सर्प है। तो रस्सी की वास्तविक सत्ता है, सर्प की प्रातिभाषिक सत्ता है। रस्सी के ज्ञान से जो जो निवृत्त होगा, माना जाएगा उसकी प्रातिभाषिक सत्ता है। तो रस्सी के ज्ञान से रस्सी का अज्ञान भी दूर होता है, रस्सी के ज्ञान से सर्पादि भी दूर हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए ये रस्सी के अज्ञान तथा सर्पादि को माना गया प्रातिभाषिक सत्ता वाला, और रस्सी को माना गया, रस्सी के ज्ञान से रस्सी तो निवृत्त नहीं होती है ना, उसका अज्ञान निवृत्त होगा, और रस्सी के अज्ञान का जो जो कार्य है सर्पादि वे निवृत्त होंगे। तो वे हैं प्रातिभाषिक और रस्सी है व्यावहारिक, तो दोनों की अलग अलग सत्ता हुई। इसलिए कारण की सत्ता से अलग सत्ता वाला का मतलब प्रातिभाषिक सत्ता वाला, जो कार्य होता है उसे विवर्त कहा जाता है। कारण पारमार्थिक है, ऐसे यहां पर परमात्मा वो पारमार्थिक है, और अविद्या तथा ये 16 कलाएं जो बताई जा रही हैं वे व्यावहारिक सत्ता वाले हैं। तो विषम सत्ता हुई दोनों की, एक की पारमार्थिक और दूसरे की व्यावहारिक, कार्य की व्यावहारिक सत्ता तो विवर्त हो गया। तो ये कलाएं जिस ब्रह्म का विवर्त है, विवर्त कार्य है, और ब्रह्म को कहा जाएगा विवर्त उपादान कारण, जिसका परिणाम है उसे कहा जाएगा परिणामी कारण, और जिसका विवर्त कार्य है उसे कहा जाएगा विवर्त उपादान कारण। विवर्त उपादान कारण का ही दूसरा नाम है अधिष्ठान। अधिष्ठान तो यस्मिन शब्द से अधिष्ठान को लिया जा रहा है, विवर्त उपादान कारण को लिया जा रहा है। तो इन कलाओं का जो विवर्त उपादान कारण है, अधिष्ठान है, और ये कलाएं जिसमें अध्यारोपित हैं, वह ज्ञेय पुरुष है, ज्ञेय पुरुष है, जानने योग्य है, उसे जानना है, उसका ज्ञान मुक्त करेगा, उसका ज्ञान मुक्ति का साधन है। इस दृष्टि से यहां पर ये कहा कि यस्मिन नेता 16 कलाः प्रभवन्ति इति, तो जिस तुम्हारे जिज्ञास्य पुरुष के अज्ञान से ये 16 कलाएं अभिव्यक्त होती हैं, प्रकट होती हैं, और उसी पुरुष से सत्ता पाकर के सत्तावांसी प्रतीत होती है, और अंत में जब उस पुरुष का मय के रूप में अनुभव होता है तो उसी पुरुष में विलीन हो जाती है। जैसे रस्सी का ज्ञान होने पर रस्सी के अज्ञान से भासने वाले सर्पादि विकल्प कहां जाते हैं, रस्सी में ही विलीन हो जाते हैं, रस्सी से अलग थे ही नहीं, खाली भ्रांति से प्रतीत हो रहे थे, वहां रस्सी का अज्ञान ही अज्ञान ही तो था। तो यस्मिन नेता 16 कला प्रभवन्ति इति, इस प्रकार ये कलाएं जो बताई जाने वाली हैं वे कार्य रूपा हैं और पुरुष की उपाधि है, पुरुष से उत्पन्न होती है और पुरुष की उपाधि बनती है, और जब तक ये 16 कलाएं रूपी उपाधियां रहती हैं तब तक ये पुरुष संसारी जीव के रूप में प्रतीत होता है। वो बताई जाएगी प्राण, श्रद्धा, आकाश आदि 5 भूत और इंद्रिय, मन, ये सब। चौथा मंत्र आने तक थोड़ा धैर्य रखिए, चौथा मंत्र आ रहा ना, अभी तीसरे में प्रवेश कर रहे हैं, हाँ सब आएगा। तो ये बताया गया यस्मिन नेता 16 कला प्रभवन्ति, इस वाक्य से कलाओं का कारण पुरुष है, पुरुष से कलाएं निष्पन्न होती हैं, तो ये कलाओं की एक साथ उत्पत्ति होती है या क्रम से उत्पत्ति होती है। कार्य है तो उसमें क्रम भी होना चाहिए, इसलिए क्रम को दिखाने के लिए आगे वाला वाक्य है। और ये कलाओं का कारण चेतन है, इसे बताने के लिए भी जड़ से जगत की उत्पत्ति नहीं है अपितु चेतन से जगत की उत्पत्ति है। चेतन परमात्मा जगत का कारण है, न कि जड़ परमाणु, न कि जड़ प्रधान। अन्य अन्य जो विचारक है जगत तथा जगत के कारण का विचार करते हैं, तो जगत के कारण का अलग अलग स्वरूप बताते हैं। जगत का कारण कौन है ये प्रश्न लेकर के यदि आप वैशेषिकों के पास जाओ तो वे कहेंगे कि जगत का कारण परमाणु है। अलग अलग परमाणु हैं, पृथ्वी के परमाणु अलग हैं, तो जल के परमाणु अलग हैं, वायु के परमाणु अलग हैं, अग्नि के परमाणु अलग हैं, और दो परमाणु मिलकर के एक द्विणुक बनता है, तीन द्विणुक मिलकर के एक त्रिणुक बनता है, ऐसे क्रम से जगत बनता है। और वो परमाणु भी जड़ है, और उनका संयोग कौन करता है, वो ईश्वर करता है। परिणामी जो आरंभवादी हैं वैशेषिक, उनके यहां ये परमाणुओं से जगत उत्पन्न होगा और ईश्वर उनका संयोग कराएगा, वो कर्ता मात्र है, निमित्त कारण मात्र है। लेकिन वेदांति कहते हैं कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण है ब्रह्मा, वही उपादान कारण भी है, वही निमित्त कारण भी है। सांख्यों के पास ये प्रश्न लेकर के जाओ तो वो कहेंगे कि जो परमात्मा है, पुरुष है, वह तो चेतन है, लेकिन जगत को बनाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भूमिका निर्वहन नहीं करता, वो कारण नहीं मानते उसे। प्रधान स्वयं ही जगत को बनाता है, जड़ प्रधान जगत का उपादान कारण है। हाँ, प्रधान प्रकृति को कहते हैं, और वही जगत का कारण है, स्वयं ही जगत के रूप में परिणत होता है। किस लिए? तो बनाती है प्रकृति, लेकिन किस लिए बनाती है? अपने लिए नहीं, पुरुष के लिए। पुरुष है चेतन आत्मा, और उस चेतन आत्माएं अनेक हैं, उनमें से जो जो चेतन आत्मा संसार का भोग करना चाहते हैं उनके लिए उनके भोगानुकूल संसार सामने लाकर के देती है प्रकृति उत्पन्न करके, और जो मुक्त होना चाहता है उसके मुक्ति के साधन प्रकृति पुरुष विवेक में वो प्रवृत्त हो जाती है स्वयं प्रकृति। प्रकृति ही शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का रूप धारण करके विवेक बुद्धि से होगा ना। तो सांख्य शास्त्र का अध्ययन आदि द्वारा पुरुष और प्रकृति के विवेक में प्रवृत्त हो जाती है, और जब विवेक पूर्ण हो जाता है तो उसे मुक्त कर देती है। तो इस प्रकार ये पुरुष को भोग या अपवर्ग दिलाने के लिए ये प्रकृति ही जगत की रचना करती है, ये सांख्य कहेंगे। हाँ, और वेदांति के पास ये प्रश्न लेकर के जाओ कि जगत कैसे बना, तो उसका उत्तर यहां पर दिया जा रहा है कि ब्रह्मा ने जगत को बनाया है, वही जगत का निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। तो उसने क्या किया, तो कहते हैं स इक्षान चक्रे, स यानी वो षोडश कल पुरुष ब्रह्मा, उस ब्रह्म ने ईक्षण किया। ईक्षण का अर्थ होता है संकल्प, उसने संकल्प किया। क्या संकल्प किया? तो मैं अकेला हूं, थोड़ा खेल करूं। तो इसके लिए फिर खेल करने के लिए दूसरे लोग भी चाहिए ना, तो बहुत शाम प्रजा ये, तो दूसरा तो कोई है नहीं जिसके साथ खेलना है, इसलिए अनेकों रूप से मैं प्रकट हो जाऊं। जैसे कहा जाता है ना कि भगवान कृष्ण के अवतार के समय जब अवतार हुआ और भगवान ने गोवर्धन को उठाया और सब लोग भगवान को मान रहे हैं, भगवान ही भगवान कृष्ण, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में एक बार संशय हुआ कि जो थोड़ा सा छाछ पीने के लिए हाथ जोड़ करके गोपियों के सामने कहता है कि मुझे छाछ दो, मुझे मक्खन दो, ये भगवान कैसे हो सकता है? तो अपने संकल्प से ही इतना सारा जगत बनाता है तो स्वादिष्ट छाछ बना करके पी नहीं सकता, थोड़ा मक्खन संकल्प से निर्माण करके खा नहीं सकता, दूसरों के सामने क्यों गिड़गिड़ाता है? और यशोदा के द्वारा बांधा जाता है तो बंधन में भी आ जाता है, ये भगवान कैसे हो सकता है? तो परीक्षा लेने के लिए एक बार कहते हैं उन्होंने ये सारी की सारी उनके जब गायें वगैरह सब और ग्वाले भी बछड़े भी सब का अपहरण करके ब्रह्मलोक ले गए और भगवान कृष्ण अकेले ही रह गए वहां। शाम हो गई तो फिर पहुंचना है घर में, तो अकेले जाएंगे तो सब लोग तो लड़ेंगे ना, गायें नहीं उनकी, उनके बच्चे नहीं, और कृष्ण अकेले जाएंगे तो कृष्ण को आने थोड़ी देंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपने संकल्प से जितनी गायों का अपहरण बछड़ों का और ग्वालों का किया था उतनी गायें उतने बछड़े वैसे के वैसे और वैसे ही ग्वाला बन गए अपने संकल्प से ही। और एक वर्ष तक वो गोकुल के किसी को भी पहचान में नहीं आया कि ये मेरी गाय नहीं है, ये मेरा बछड़ा नहीं है या ये मेरा बच्चा नहीं है। जिस घर का जो बच्चा था उसी घर में रह रहा है, उन्हीं के साथ व्यवहार कर रहा है, एक वर्ष में किसी ने नहीं पहचाना। वर्ष बाद फिर ब्रह्मा जी को लगा कि देखू जा करके, लोगों ने तो इसको बंधक बनाया हुआ, खूब पिटाई की होगी, देखा तो वैसा का वैसा ही सब व्यवहार चल रहा है गोकुल में, तो किसी को कुछ पता भी नहीं कि गायें भी हमारी चोरी हो गई हैं, बच्चे भी चोरी हो गए हैं। फिर ब्रह्मा जी तो सामने आते हैं ना और भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं, का मतलब सत्य संकल्प होता है भगवान, उन्होंने संकल्प किया और अकेले के ही अनेक हो गए, जितनी गायें थी उतनी गायें भी बने, सब कुछ बने। तो स इक्षान चक्रे, तो मूल वाला भी, जो मूल में ब्रह्म है ना, वही ब्रह्म कृष्ण का रूप धारण करके आया है, इसलिए उनकी संकल्प शक्ति क्षीण नहीं होती है, किसी भी रूप में चला जाए वो बच्चा हो तब भी। इसलिए तृणावर्त उड़ा करके ले जाता है छोटे से बच्चे को, लेकिन इतना वजन बढ़ाते हैं कि वो नीचे गिर जाता है, पूतना आकाश में जाती है लेकिन इतना वजन बढ़ जाता है कि वो गिर जाती है उनको लेकर के, लेकिन इनको कुछ नहीं होता, क्योंकि संकल्प से वो अपने हल्के भी हो सकते हैं, ज्यादा वजनदार भी हो सकते हैं, सत्य संकल्प होता है ना। तो स इक्षान चक्रे, उस पुरुष ने संकल्प किया कि मैं अकेला हूं और खेलूं थोड़ा, तो उसके लिए अनेक चाहिए, द्वैत चाहिए, तो अपने संकल्प से ही अनेक रूप धारण किया, अनेक बनने का संकल्प किया। उसके लिए फिर ये आगे की चर्चा आ रही है वो हम लोग कल देखते हैं। षोड़श कलाओं का उत्तर शायद कल मिलेगा आपको, पहले दिन से ही ये प्रश्न आपके हृदय में चुभ रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही।